श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है मैटर्निक युग। तो आइए शुरू करते हैं मैटर्निक युग को। मध्य यूरोप के विस्तृत भूभाग पर फैला पवित्र रोमन साम्राज्य मुख्यतः जर्मनी था, फिर भी उसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। नेपोलियन ने इस साम्राज्य की प्राचीन गरिमा भंग कर दी थी, लेकिन वियना में एक बार फिर ऑस्ट्रियन साम्राज्य प्रतिष्ठित होकर उभरा था और जर्मनी क्षेत्र के अन्य राज्यों में उसने प्रमुखता पाई थी। इस राज्य में इटालियन, हंगेरियन, बोहेमियन जैसे राष्ट्रीयता के लोग अपनी राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिए व्यस्त और सचेष्ट थे, लेकिन वियना के बाद की व्यवस्थाओं और आकांक्षाओं के सर्वथा विपरीत थी। ऑस्ट्रिया में सत्ता का संचालन मेटरनिक के हाथ में था। वह साम्राज्य के अलग अलग घटकों को आपस में लड़ाकर उनका पक्ष कमजोर बनाए रखना चाहता था। यूरोप के अल्पसंख्यकों में हस्तक्षेप करने का हिमायती मेटरनिक ऑस्ट्रिया में तो किसी भी विद्रोह या राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में निशंस तरीके अपनाने को तैयार था। यदि साम्राज्य में एकरूपता होती तो संवैधानिक राजतंत्र का आंदोलन छिड़ सकता था। यहाँ की विविधाओं में विद्रोह का स्वरूप अनिवार्यता राष्ट्रीय हो गया। सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी साम्राज्य के इटालियन प्रांत वेनेसिया और लोम्बार्डी में भड़की। वहाँ के राष्ट्रवादी लोग ऑस्ट्रेलिया प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहते थे। इटली के राष्ट्रभक्त अपने देश में ऑस्ट्रियाई लोगों की मौजूदगी को एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध समझते थे। इसलिए लोम्बार्डी और वेनेसिया के विद्रोह को सारे इटली में समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन फिलहाल उसे दबा दिया गया। कुछ दिन बाद ही हंगरी में विद्रोह हुआ। नेपोलियन की सेनाएं जहां गई थी वहां पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, लेकिन हंगरी में अभी भी सामंती शासन था। देश की लोकसभा एक तरह से सामंत सभा थी, जिसमें केवल कुलीनों को अधिकार प्राप्त था। किसान सभी को अर्ध गुलाम की तरह रहता था। हंगरी में भी परिवर्तन की हवा बहने लगी थी। सबसे पहले भाषा का प्रश्न उठा। सारे यूरोप में राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हो चुका था, लेकिन हंगरी में मैगार के स्थान पर लातिन भाषा ही राजभाषा थी। मैगार भाषा को मान्यता मिली तो राज्य के अन्य अल्पमत सर्ब और क्रोट लोग भी अपनी भाषाओं के लिए मांग करने लगे। लेकिन आंदोलन का प्रखर रूप तब प्रकट हुआ जब एक प्रबुद्ध वकील कोसुथ ने लोकसभा में और बाहर भी अपने समाचार पत्र के माध्यम से विशेषाधिकारों और किसानों की अर्धगुलामी को अंत करने की मांग की। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी मांग की। उसने लोकसभा को पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा केवल सामंतों की नहीं बनाने की मांग की और कानून बनाने तथा कर लगाने का पूरा अधिकार देने की वकालत की। उसने ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से भी मुक्ति चाही। उत्तर में स्थित बोहेमिया का बहुमत चेक था। वहाँ भी अल्पमत जर्मन लोगों के प्रभुत्व से आक्रांत चेक लोग अपनी भाषा के विकास तथा ऑस्ट्रिया से मुक्त होना चाहते थे। उन्हें हंगरी के आंदोलन से प्रेरणा मिली। वहाँ भी एक मांग पत्र तैयार कर उसे वियना भेजा गया। जैसे ही पेरिस में फरवरी क्रांति की खबर मिली, मार्च में कोसुथ ने हंगरी की लोकसभा में ऑस्ट्रियन सरकार की कटु आलोचना की। लोकसभा ने हंगरी के लिए अलग अलग संविधान की मांग की। सम्राट फर्डिनेंड को मांग स्वीकार करनी पड़ी। जनमत परिवर्तन के लिए इतना कटिबद्ध था कि प्रतिक्रियावादियों को विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी और मार्च कानून पारित कर दिया गया। इस कानूनों द्वारा अर्ध गुलामी का अंत हो गया। राजधानी बुडापेस्ट में एक प्रतिनिधि सभा बुलाई गई और मंत्रिमंडल को इस सभा के लिए प्रति उत्तरदायी बनाया गया। प्रेस को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। हंगरी को ऑस्ट्रिया के बराबर दर्जा दिया गया। दोनों को जोड़ने वाले एकमात्र सूत्र दोनों राज्यों का एक ही सम्राट रह गया। सम्राट को ये कानून स्वीकार करने पड़े। हंगरिया का नया राष्ट्रध्वज बनाया गया। स्वतंत्र सेना बनाई गई और स्वतंत्र अस्तित्व के परिचायक के रूप में हंगरी के राजदूत दूसरे देशों में नियुक्त किए जाने लगे। स्वयं ऑस्ट्रिया में क्रांति का असर और भी महत्वपूर्ण था। पहली बार मजदूरों और छात्रों ने मिलकर वियना में विद्रोह किया और मेटरनिक को आक्रमण का केंद्र बनाया। यह सब इतने आकस्मिक ढंग से हुआ कि इसके लिए न सरकार तैयार थी और न ही मेटरनिक। मेटरनिक मानो विमुट की स्थिति में हो गया और भेष बदलकर इंग्लैंड भाग गया। भीड़ ने उसका घर जलाकर खाक कर दिया। 3 दशकों तक जो हवा खड़ा किया था वह एक ही प्रहार में धूसर हो गया। सम्राट ने शीघ्र ही संविधान बनाने की घोषणा की और समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा लिए। इसी समय चेक लोगों ने मांग की कि उन्हें एक संवैधानिक अधिकार भी मिलना चाहिए। चेक और जर्मन लोगों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। एक ही महीने में सारे साम्राज्य में मेटरनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई और संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सरकारों का उदय होने लगा। ऑस्ट्रिया के लिए संविधान बनाने के क्रम में लोकसभा का अधिवेशन होने वाला था, लेकिन सम्राट ने पहले ही संविधान की घोषणा कर दी थी, जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की बात थी। संविधान सही अर्थों में जनतांत्रिक नहीं था और वियना के छात्रों में मई से फिर आंदोलन तेज कर दिया। छात्रों की अर्धसैनिक संस्था को भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता न मिल पाने पर सम्राट ने संविधान सभा बनाने और वयस्क मताधिकार की घोषणा कर दी। वियना में हताश सम्राट की राजधानी छोड़कर भाग गया। शायद उसके सामने लुई 16वें की फ्रांस की क्रांति की तस्वीर रही होगी। वह उसी तरह असहाय नहीं होना चाहता था। वह पर्वतीय नगर इंसब्रुक चला गया। वह सामंतों और प्रतिक्रियावादियों से मिलकर क्रांति की योजना बनानी शुरू कर दी। स्वतः स्फूर्त स्थितियों के कारण क्रांति का आधार संगठित नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा और सम्राट के समर्थकों को सफलता मिलने लगी। सबसे पहले बोहेमिया में फूट पड़ी और चेक और जर्मन लोग आपस में लड़ने लगे। जर्मन लोग जर्मन राष्ट्रीयता के हित में जर्मन संघर्ष की कल्पना कर रहे थे और चेक लोग स्लाव जातियों के संघ की बात सोच रहे थे। उनके संघर्ष का फायदा उठाकर ऑस्ट्रिया की सेना ने प्राग पर बमबारी की और बोहेमिया की क्रांति दबा दी गई। 2 महीने में इटली के प्रांतों का भी विद्रोह भी दब गया। हंगरी और मैगार लोगों को जो अधिकार मिले थे, वैसे ही अधिकार अल्पमत की राष्ट्रीयता के लोग जैसे क्रोट, सर्ब और रोमानियाई ने भी मांगे। मैगर यदि दूरदर्शित होते तो उन्हें जो कुछ ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुआ था उसे दूसरों को भी देकर अपनी स्थिति मजबूत कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सम्राट की सेना ने हंगरी में भी हस्तक्षेप किया और हंगरी की लोकसभा भंग कर दी गई। लेकिन हंगरी में दमन आसान नहीं था। वहाँ युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसमें कभी ऑस्ट्रिया की पूरी तरह बुडापेस्ट पर कब्जा हो जाता था तो कभी हंगरी की सेना ऑस्ट्रिया में घुसने लगती थी। दोनों ही तबाह हो रहे थे, लेकिन इसी समय कोसुथ ने भयंकर भूल की। उसने हंगरी में जनतंत्र की घोषणा कर दी और स्वयं राष्ट्रपति बन बैठा। इससे तो एक आंतरिक फूट पड़ी और दूसरे रूस का जार चौकन्ना हो गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं के करीब एक गणतंत्र का अस्तित्व बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया और हंगरी दो तरफा हमले में पिस गया। कोसुथ तो बच निकला, लेकिन मग्यार जनता पर भारी जुल्म हुआ। वहाँ के सारे नए कानून समाप्त कर दिए गए और हंगरी को साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। इस तरह पूरे साम्राज्य में हर कहीं सम्राट का प्रभुत्व पुनर्स्थापित हो गया। राजनीतिक अधिकार इस क्रांति से नहीं मिले, लेकिन मेटर्निक युग नहीं लौट सका। शासन पहले जैसा क्रूर और जनविरोधी न रहने के लिए बाध्य हो गया। प्रशा की राजधानी बर्लिन में भी क्रांति की अनुगूंज सुनाई पड़ी। सड़कों पर प्रदर्शन हुए और संविधान की मांग बढ़ने लगी। समाचार पत्रों से रोक हटा ली गई और एक संविधान सभा बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन भीड़ जब राजा को धन्यवाद देने महल पहुंची तो सेना ने आतंकित होकर गोली चलानी शुरू कर दी। इस संघर्ष में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। स्थिति और अधिक न बिगड़े इसलिए राजा ने एक उदार मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर दी और मई में संविधान सभा और अधिवेशन बर्लिन में शुरू हो गया। जर्मन क्षेत्रों के अन्य राज्य जैसे बेबेरिया, बादेन, सैक्सनी, ब्रुटेनबुर्ग आदि में उदारपंथियों की जीत हुई। डेनमार्क और हॉलैंड में भी संविधान की मांगें स्वीकार कर ली गईं और निर्वाचित पार्लियामेंट की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में 1830 की क्रांति के शुरू होने के बाद हुए सुधारवादी चर्टिस्ट आंदोलन को विशेष सफलता नहीं मिल पा रही थी। फ्रांस की क्रांति की सूचना मिलते ही चर्टिस्टों ने विशाल प्रदर्शन किया। शासन द्वारा सेना और पुलिस के प्रबंधों से डटकर प्रदर्शन तो नहीं किया गया, लेकिन मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। जब यह पता चला कि मांग पत्र पर बहुत से हस्ताक्षर जाली थे तो आंदोलनकारियों की फजीहत सी हो गई। वैसे भी यूरोप के अन्य देशों जैसी स्थिति नहीं थी। यूरोप के क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें इंग्लैंड में बेकार थी, क्योंकि अपेक्षतया इंग्लैंड का तंत्र सुधारवादी था। आयरलैंड में आवश्यक अंग्रेजों को दमनकारी नीति और भुखमरी के कारण सशस्त्र विद्रोह हुए, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने उस पर आसानी से नियंत्रण पा लिया। क्रांति का मूल्यांकन। अगला हेडिंग है क्रांति का मूल्यांकन। इस तरह सारे यूरोप में छोटी बड़ी 17 क्रांतियां हुई। कहीं तो कुछ ही दिनों में उसे समाप्त कर दिया गया, कहीं कुछ उदारवादी परिवर्तन के बाद क्रांतियों का प्रभाव कम होते ही उसे समाप्त कर दिया गया। फ्रांस में कुछ दिनों के लिए मौलिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। वहाँ भी लुई नेपोलियन के राष्ट्रपति चुने जाते ही क्रांति का प्रभाव समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन आवश्यक हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया या जर्मन में उदार और प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं शुरू हो सके। क्या कारण था कि कुछ ही महीनों में जंगल की आग की तरह फैल जाने वाली क्रांति इस तरह बुझ गई, कुछ राख और अवशेष ही बच पाए? कारण स्पष्ट है, असंतोष केवल नगरों में मुखर था, कठिनाइयां गांवों में अधिक थी, लेकिन उसके प्रति जागरूकता केवल नगरों में ही थी। नगर में मध्यम वर्ग और नवोदित पूंजीपति वर्ग के हित एक ओर थे और मेहनत कश मजदूरों के हित दूसरी ओर। संख्या मजदूरों के पास थी तो अनुभव और शक्ति उसके विरोधियों के। परिवर्तन दोनों चाहते थे, लेकिन मजदूरों के हित वाले परिवर्तन संभव नहीं थे, क्योंकि अभी न तो मजदूर संगठित था और न ही उसके पास नेतृत्व था। इस समय सबसे व्याप्त और प्रभावशाली धारा राष्ट्रवादिता की थी, और इतिहास स्पष्ट करता है कि राष्ट्रप्रेम की दुहाई देकर जनविरोधी शक्तियां भी जनता का इस्तेमाल कर लेती हैं। यूरोप के भी शासक वर्ग राष्ट्रवाद के नाम पर सामान्य जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता को अपने साथ कर लेता था। ऐसी स्थिति में क्रांति का ज्वार कुछ ही महीनों में थम गया। फ्रांस में लुई नेपोलियन जैसी प्रतिक्रियावादिता पहले राष्ट्रपति फिर सम्राट बन बैठा। ऑस्ट्रिया अपनी पुरानी नीति पर चलता रहा और इटली तथा जर्मन में उसकी प्रधानता बनी रही। इटली और जर्मन के राष्ट्रवादी प्रयास दबा दिए गए। हंगरी और बोहेमिया पर निरंकुश शासन थोप दिया गया। हर कहीं निरंकुश राष्ट्रवाद विरोधी और प्रतिक्रियावादी ताकतों का बोलबाला हो गया। 1848 की क्रांति पहले की क्रांतियों की तरह एक विकसित कड़ी थी, लेकिन समाज की नई स्थितियों में क्रांतिकारी शक्तियां अपने शक्ति और संगठन का आकलन नहीं कर पाई। शासक वर्ग अधिक समर्थ और निर्मम होता जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह कि क्रांतिकारी किसी एक सिद्धांत कार्यक्रम से नहीं जुड़े हुए थे। परिवर्तन सब चाहते थे, लेकिन इस बात पर मतभेद था कि परिवर्तन किसके पक्ष में और कैसे हो। सत्ता का आधार अब भी सेना थी और पूरी तरह शासकों के नियंत्रण में थी। इन क्रांतिकारियों के प्रेरक शक्ति कहीं राष्ट्रवाद, कहीं जनवाद और कहीं समाजवाद थी। इनकी भूमिका गड्डमगड थी। जैसे राष्ट्रवाद के नाम पर समाज की सभी शक्तियां और सभी वर्ग सक्रिय हो जाते थे, जबकि जनवाद के नाम पर विशेषकर पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग तथा समाजवाद के नाम पर मुख्यतः मजदूर वर्ग। इन वर्गों के बीच आपस में भी अंतर विरोध थे। पूंजीपति वर्ग के उत्कर्ष और सफलता ने भी वह परिस्थितियां पैदा कर दी, जिससे मजदूर वर्ग का असंतोष बढ़ता गया। इस प्रकार 1848 की क्रांति इस अर्थ में 1789 और 1830 की क्रांति से भिन्न थी। इसमें पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच का अंतर्विरोध प्रकट होने लगा। दमन के बावजूद इन क्रांतियों का कुछ अस्थायी प्रभाव हुआ। संविधान का जो क्रम शुरू हुआ वह पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में संघीय गणतंत्र की स्थापना अस्थायी सिद्ध हुई। प्रसा हॉलैंड और डेनमार्क के शासन तंत्रों में भी प्रजातंत्र के बीज पड़ गए। इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूरोप में दो प्रबल राष्ट्रवादी आंदोलनों की विफलता ने राष्ट्रभक्तों को हतोत्साही करने के बजाय दृढ़ बनाया। यह तय हो गया कि ऑस्ट्रिया ही उनका प्रमुख दुश्मन है। उनके भावी कार्यक्रमों में 1848 के अनुभवों ने सहायता पहुंचाई। इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि श्रमिक वर्ग को अस्थायी सबक मिल गया कि पूंजीपति वर्ग उसका नेतृत्व करके अपना लाभ उठाता है और वास्तव में वह वर्ग उसका विरोधी है। इस क्रांति के बाद समाजवादी आंदोलनों और संगठन में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रभाव बढ़ता गया और समाजवादी संगठन सारे यूरोप में प्रसार पाने लगा। हमारा अगला हेडिंग है मिटरनिक युग का अंत। क्रांति के बाद नेपोलियन का उद्भव जिस प्रकार सामाजिक विकास की प्रक्रिया और उसमें निहित संघर्षों को समझने में मदद करता था, उसी प्रकार वियना कांग्रेस के बाद स्थापित मिटरनिक के प्रभाव से भी यूरोप में क्रांति और प्रतिक्रांति की शक्तियां के टकराहट को समझने में सहायता मिलती है। मिटरनिक ने अपनी पुत्री को नेपोलियन के संबंध में लिखते हुए कहा था कि मुझे वह अंतरात्मा की मूर्त रूप समझता होगा। दूसरी ओर नेपोलियन कहता था कि मिटरनिक तो षड्यंत्रों की राजनीति समझता है। इन दो कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मिटरनिक की कार्यप्रणाली में षड्यंत्रों का बहुत बड़ा महत्व था, परंतु स्वयं अपने कार्य को एक अभियान समझता था। कूटनीति में प्रायः जैसा कि होता है, वह नारियों का इस्तेमाल बड़ी खूबी से करता था। नेपोलियन की बहन और जनरल म्यूरा की पत्नी कैरोलिना से दोस्ती गांठ कर वह नेपोलियन के रहस्यों का पता लगाता रहा। वियना ने भी वह नाच पार्टियों के माध्यम से दूसरों की बातें जानता रहा और अपनी बातें स्वीकार कराता था। इसलिए कहते हैं कि वियना में नाच अधिक और काम कम हुआ। मिटरनिक के दृढ़ विश्वास थे, जिनको आधार मानकर वह ऑस्ट्रिया और यूरोप के स्वरूप को निर्धारित करना चाहता था। उसे अपनी ही भूमिका पर बड़ा विश्वास था। वह सोचता था कि दुनिया जैसे उसके कंधों पर टिकी हुई है। उसके सिद्धांतों में दो बातें प्रमुख थी। वह पक्का यथास्थितिवादी था और हर परिवर्तन का विरोधी था। वह कहता था कि हर नवीनीकरण पागलपन है। दूसरे, वह प्रजातंत्र का घोर विरोधी था। उसके विचार से प्रजातंत्र प्रकाश को भी अंधकार में बदल देता है। इस प्रकार वह प्रतिक्रियावादियों का मुख्य आधार और उदारवादियों के लिए हवा और क्रांतिकारियों के लिए आतंक था। राज्य को वह राजाओं की रियासत समझता था, इसलिए राष्ट्रवाद और का वह कट्टर विरोधी था। भले ही वह ऑस्ट्रियाई राष्ट्रवाद ही क्यों न हो, वह 39 वर्ष तक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और राज्य उसकी मुट्ठी में होता था। फिर भी उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऑस्ट्रिया साम्राज्य की सुरक्षा तक सीमित थी। यह मानना पड़ेगा कि अपने साम्राज्य की सेवा एक कुशल और स्वामीभक्त कर्मचारी की तरह उसने की। उसे बौद्धिक और दार्शनिक बातों की समझ नहीं थी। इतिहास में भी उससे कुछ नहीं सीखा। उसे कल्पनाशील भी नहीं कहा जा सकता। पर वह एक व्यवहार कुशल और हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति था और आचार व्यवहार में पूर्णतः कुशल था। मित्रता करके किसी की विश्वास प्राप्त कर लेना उसे हस्तसिद्ध था। वह नेपोलियन से घृणा करता था और नेपोलियन उसे षड्यंत्रकारी मानता था। फिर भी नेपोलियन के वह विशेष निकट था और दोनों के बीच अंतरंग वार्तालाप हुआ था। उसने क्रांति की ध्वंसात्मक शक्ति को भी महत्व दिया और वह समझता था कि क्रांति से परंपरागत व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसे वह यूरोप, विशेषकर ऑस्ट्रिया के लिए खतरनाक समझता था। जनता से उसका प्रबुद्ध निरंकुश शासकों के जैसा लगाव नहीं था। ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ के सुधारवादी उत्साह का बुरा परिणाम उसके सामने था। इसलिए वह हर कीमत पर समाज को बदल देने से रोकने को अपना प्रधान कार्य समझता था। दृढ़ आत्मविश्वासी होने के साथ वह यह भी समझता कि केवल मैं यूरोप को बचा सकता हूँ। वियना कांग्रेस की पुरातन व्यवस्था स्थापित होने के बाद चतुर्मुखी संघ की यूरोपीय व्यवस्था के सहारे उसने हर कहीं परिवर्तन का विरोध किया, विशेष रूप से इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलियाई प्रदेशों में। कार्लसवाद के घोषित अध्यादेश स्वतंत्रता, खासतौर पर बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता के विरुद्ध कठोरतम नियम बनाए जाते थे। दमन और कूटनीति षड्यंत्र और हस्तक्षेप के माध्यम से सारे यूरोप की चौकीदारी करने के बावजूद यूनान और बेल्जियम में राष्ट्रवादियों की विजय इस बात का प्रमाण है कि वह समय की ज्वार को नहीं रोक सकता था। सारे यूरोप और ऑस्ट्रियाई साम्राज्यवाद में भी विद्रोह का तांता नहीं रुका। मिटरनिक की नींद हमेशा हराम रही। वह कहा करता था, मुझे या तो पहले पैदा होना चाहिए था मुझे या तो पहले पैदा होना चाहिए था या बाद में। पहले पैदा होता तो जीवन के सुख भोगता और बाद में पैदा होता तो युग निर्माण में सहायक होता। आज तो मुझे पत्नोमुखी संस्थाओं से बचाने के में ही खप जाना पड़ता है। इस कथन में काफ़ी हद तक सच्चाई है। वास्तव में वह 18वीं शताब्दी के ही उपयुक्त था, वक्त के साथ नहीं बदला। इसके विपरीत वह वक्त को रोकने की भी कोशिश करता। उसे पता नहीं कि वह स्वयं बूढ़ा होता जा रहा था, जबकि दुनिया निर्माणों के दौर में जन्म ले रही थी। 1848 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो वह स्तब्ध रह गया। वह अपनी ही नीतियों और अदूरदर्शिता द्वारा छला गया, परंतु कुछ ही महीनों में सारे यूरोप में क्रांति कुचल दी गई। वियना में भी पुरानी स्थिति लौट आई, लेकिन मेटर्निख युग स्थापित नहीं हो सका। इन क्रांतियों के बाद प्रतिक्रियावाद को रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ा। मेटर्निख जैसा विश्वास और अभियान किसी में नहीं था, इसलिए उसके पतन के साथ ही यूरोप के इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। मेटर्निख यथास्थितिवाद का अंतिम गढ़ और सेनापति था। उसने मध्ययुगीन आस्था के साथ सामंती समाज की रक्षा करना चाहा था, लेकिन औद्योगिक क्रांति में सामंतवाद की नींव पर भी प्रहार किया था और यूरोप में अब सामंतवाद को कोई बचा नहीं सकता था। मेटर्निख ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें पराजय सुनिश्चित थी। इसके बावजूद यह मानना पड़ेगा कि वह एक कुशल सेनापति था और अंतिम क्षण तक अपने लक्ष्य के लिए संघर्षरत रहा। वह सामंतों और पूंजीपतियों के एक हिस्से पर भरोसा करता था और दोनों के बीच संतुलन बनाकर सरकार की स्वतंत्रता बरकरार रखता था। वह किसानों और मजदूरों को उनके पुरखे जैसी हालात में रखना चाहता था। बौद्धिक खुराक पर विशेष नियंत्रण करना चाहता था। इस प्रकार मेटर्निख 19वीं शताब्दी की एक प्रतिनिधि यूरोपीय प्रशासक था, जो पुरातन व्यवस्था मरणासन्न थी और नई विकासमान मेटर्निख पुरातन व्यवस्था की बुझती हुई लौ की अंतिम चमक जैसा था। इसे एक बार और सुने। इस प्रकार मेटर्निख 19वीं सदी का एक प्रतिनिधि यूरोपीय प्रशासक है, जब पुरानी व्यवस्था मरणासन्न थी और नई विकासमान मेटर्निख पुरातनिक व्यवस्था की बुझती लौ की अंतिम चमक जैसा था। श्रोताओं, इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार हम इस अध्याय में हमने जिन विषयों का अध्ययन किया, जिन हेडिंगों का अध्ययन किया, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसमें हमने मुख्य रूप से 1830 व 1848 की क्रांतियों, मेटर्निख युग और मेटर्निख युग का पतन, इन विषयों पर हमने अध्ययन किया है। इसमें 1830 और 1848 की क्रांतियों का मूल्यांकन भी प्रस्तुत है। धन्यवाद।